नमस्कार, स्पोर्ट्स स्कैन में आप सभी का स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। आज आपके साथ मैं हूं जागृति शर्मा और तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल विशेषज्ञ मनोज जोशी। मनोज, स्पोर्ट्स स्कैन में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
धन्यवाद।
कार्यक्रम में बढ़ेंगे आगे, लेकिन उससे पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। T20 क्रिकेट विश्व कप में श्रीलंका और दक्षिण अफ्रीका के बीच मुकाबला जारी। प्रसार भारती ने T20 क्रिकेट विश्व कप के लिए विशेष गीत और प्रोमो जारी किया। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स में भारत के रोहन बोपन्ना और उनके ऑस्ट्रेलियाई जोड़ीदार मैथ्यू एबडन का सामना एन श्रीराम बालाजी और मिगुएल एंजेल रेयेस की भारतीय मैक्सिकन जोड़ी से चल रहा है। और इंडोनेशिया ओपन सुपर 1000 बैडमिंटन टूर्नामेंट कल से शुरू होगा। तो शुरुआत करते हैं क्रिकेट के महासमर के साथ ही, जहां पर न्यूयॉर्क के नसाउ काउंटी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में इस समय श्रीलंका और दक्षिण अफ्रीका के बीच मुकाबला चल रहा है। श्रीलंका टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी कर रहा है। और अगर बात करें अभी अपडेट स्कोर की, तो ताजा समाचार मिलने तक श्रीलंका ने 26 रन बनाए हैं एक विकेट के नुकसान पर और ओवर हुए हैं 6 और 7वें ओवर की 2 गेंद फेंकी जा चुकी है। आज के मुकाबले को आप किस तरह से देखते हैं? एक तरफ श्रीलंका है और दूसरी तरफ दक्षिण अफ्रीका, हालांकि अभी शुरुआती मुकाबले हैं।
जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि अगर जहां तक मुकाबले का सवाल है, साउथ अफ्रीका की टीम का हालिया प्रदर्शन बहुत खराब रहा है, खासकर उसके गेंदबाजों ने उसको डुबोने का काम किया है। अगर आप देखें तो नोरखिया बहुत महंगे साबित हो रहे हैं और बाकी अन्य गेंदबाजों का भी वो साथ नहीं मिल पा रहा। लुंगी एंगड़ी है नहीं और आज तबरेज शमसी को नहीं खिलाया और आज इस मैच में केशव महाराज खेल रहे हैं एकमात्र स्पिनर के तौर पर। और ये बात समझी भी जा सकती है, मुकाबला न्यूयॉर्क में है और न्यूयॉर्क में हमने प्रैक्टिस मैच देखा, एक अन्य मुकाबला देखा जहां गेंद जो है स्पिनर्स के लिए कोई स्कोप नहीं है। यहां पर बहुत, अगर कोई अपने बाहुबल से या अपनी कलाइयों के सहारे कोई गेंद को टर्न कराता है तो बात अलग है। और बाकी यहां पर उछाल काफी अच्छा है और उछाल के साथ साथ मूवमेंट काफी अच्छा है। तो जो न्यूयॉर्क है, यहां पर क्योंकि भारत को अपने चार में से तीन मुकाबले न्यूयॉर्क में खेलने हैं और गेंद थोड़ी सी जिस तरह से वेस्टइंडीज में रुक कर आती है, यहां गेंद बल्ले पर आ रही है, इसलिए रन भी यहां पर बन रहे हैं और अच्छे खासे रन बने हैं। अगर आप पिछला मैच भी देखेंगे, यहां जो पिछला मुकाबला था कनाडा और अमेरिका के बीच में खेला गया था, जहां दोनों टीमों ने 190 प्लस का स्कोर बनाया था, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहां विकेटों का पतझड़ जैसी बात नहीं है जैसे कि वेस्टइंडीज में हो रही है।
बिल्कुल, अगर देखा जाए तो जो दो वेन्यू हैं, दोनों पर जो पिच का अगर मिजाज है वो एकदम अलग है।
बिल्कुल अलग है। और मैं तो यही कहूंगा कि यहां क्योंकि भारत को लीग मुकाबले खेलने हैं, भारत के पास स्पिनर्स की भरमार है, तो अब यहां स्पिनर्स का उतना बोलबाला नहीं है। जब भारत प्ले अंतिम आठ में या ये कहिए कि सुपर एट में जब पहुंचेगा, उसके बाद क्योंकि मुकाबले फिर वो वेस्टइंडीज में होंगे और वेस्टइंडीज में काफी स्कोप रहेगा तेज गेंदबाजों के साथ साथ स्पिनर्स का भी, क्योंकि गेंद जरा रुक कर आएगी वहां। लेकिन यहां भारत, मैं समझता हूं कि चार फ्रंटलाइन बॉलर्स, तीन बॉलर्स और एक हार्दिक पांड्या सहित कुल मिलाकर चार फास्ट बॉलर से उतरने वाला है। जहां तक इस मैच की बात करें, अगर आपने जैसे पूछा, तो जो पावर प्ले है वो बहुत ही कारगर रहा है यहां पर श्रीलंका के लिए, क्योंकि श्रीलंका ने पावर प्ले में सिर्फ 24 रन दिए हैं और एक विकेट, श्रीलंका का एक विकेट भी गिरा है। साउथ अफ्रीका के गेंदबाजी की तारीफ करनी होगी कि उन्होंने वाकई पावर प्ले में बहुत शानदार गेंदबाजी की है।
बिल्कुल, पिच को देखते हुए वाकई में उनकी बॉलिंग अच्छी रही। और अगर आज के एक अन्य मैच की हम बात करें जो किंगस्टन ओवल में खेला गया, बेहद रोमांचक मुकाबला रहा, जहां पर नामीबिया ने सुपर ओवर में ओमान को हराकर टूर्नामेंट में जीत के साथ शुरुआत की। ओमान ने 10 विकेट के नुकसान पर 109 रन बनाए थे। मेहरान खान की अच्छी गेंदबाजी की बदौलत ओमान मुकाबले को ड्रॉ कराने में सफल रही। वहीं सुपर ओवर में पहले बल्लेबाजी करते हुए नामीबिया की टीम ने बिना विकेट खोए 21 रन बनाए। नामीबिया के डेविड वियासे की शानदार गेंदबाजी ने ओमान की टीम को एक विकेट के नुकसान पर मात्र 10 रन पर ही रोक दिया। और आकाशवाणी अमेरिका और वेस्टइंडीज में आयोजित हो रहे आईसीसी T20 क्रिकेट विश्व कप का आंखों देखा हाल प्रसारित करेगा। भारत के सभी मैच, नॉकआउट मैचेस, सेमीफाइनल और फाइनल का प्रसारण भी किया जाएगा। कमेंट्री के अलावा मैच के शुरू होने से पहले, पारी ब्रेक के दौरान, मैच के बाद अंग्रेजी और हिंदी में विशेष कार्यक्रमों का प्रसारण किया जाएगा। डीडी स्पोर्ट्स चैनल पर भारत के सभी मैच, सेमीफाइनल मुकाबले और फाइनल मैच दिखाया जाएगा। सूचना और प्रसारण सचिव संजय जाजू तथा प्रसार भारती के अध्यक्ष नवनीत कुमार सहगल ने आज नई दिल्ली में क्रिकेट विश्व कप के दौरान प्रसारित होने वाला विशेष गीत और प्रोमो जारी किया। आइए सुनते हैं विशेष गीत।
जीतेंगे प्रण है बन के आंधी और तूफान उतरेंगे जब ये मैदान होगी यूसी देश की झूमेगा हिंदुस्तान T20 वर्ल्ड कप के दर्शन ओनली ओनली ऑन दूरदर्शन
दौड़े रक्त में हौसला सीने में विश्वास लिए खेलेंगे हम अंगारों से जज्बा कुछ खास लिए।
इस अवसर पर श्री संजय जाजू ने कहा कि देश का प्रसारण क्षेत्र जीवंत और विविधतापूर्ण है। उन्होंने कहा कि दूरदर्शन का फ्री डिश नेटवर्क 300 चैनलों के साथ 5 करोड़ घरों तक पहुंच चुका है। इन चैनलों पर समाचार, खेल, शिक्षा और मनोरंजन से जुड़े कार्यक्रम दिखाए जाते हैं।
दूरदर्शन आज लगभग 300 चैनल प्रोवाइड कर रहा है, इसमें से लगभग 200 चैनल एजुकेशनल चैनल है। तो बहुत बड़ा एक सोशल इकोनॉमिक इम्पैक्ट है जो आज कार्यक्रम चल रहे हैं डीडी फ्री डिश के माध्यम से। डीडी फ्री डिश हमारे देश की आज एक लार्ज सेगमेंट को, दूर दराज सेगमेंट को भी आज एंटरटेनमेंट, न्यूज, एजुकेशन, स्पोर्ट्स, हर किस्म का कंटेंट आज प्रोवाइड कर रहा है।
प्रसार भारती के अध्यक्ष नवनीत कुमार सहगल ने कहा कि उनका लक्ष्य डीडी की फ्री डिश के माध्यम से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होने वाले खेल टूर्नामेंट्स को देश के गांव गांव तक पहुंचाना है।
हमारा प्रयास है कि जो देश में राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो स्पोर्ट्स इवेंट्स हैं उनको हम कैसे गांव गांव तक, मोहल्ले मोहल्ले तक ले जाएं, क्योंकि हम फ्री डिश अवेलेबल है, हमारी पूरा चैनल हमारा फ्री है। तो हम जितने नेशनल इंटरनेशनल लेवल के टूर्नामेंट्स हैं, लीग्स हैं, सबसे टाइप करने की कोशिश कर रहे हैं। उसी क्रम में जैसे आपको मालूम है T20 वर्ल्ड कप आएगा, फिर पैरिस ओलंपिक भी आएगा, फिर उसके बाद विंबलडन आएगा, फिर उसके बाद फ्रेंच ओपन आएगा।
और फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स में भारत के रोहन बोपन्ना और उनके ऑस्ट्रेलियाई जोड़ीदार मैथ्यू एबडन का सामना इस समय एन श्रीराम बालाजी और मिगुएल एंजेल रेयेस वेरेला मार्टिनेज की भारतीय मैक्सिकन जोड़ी से चल रहा है। तीसरे दौर के मैच में दोनों ने एक एक सेट जीता है, तीसरा सेट अभी चल रहा है। तो इन दोनों की जोड़ी के बारे में क्या लगता है? दोनों तरफ भारतीय हैं, कोई भी जीते भारतीय आगे पहुंचेंगे।
देखिए, यहां थोड़ा सा एडवांटेज रोहन बोपन्ना को ज्यादा है क्योंकि वो रेगुलर खेल रहे हैं मैट इब्रिन के साथ। और वहीं अगर हम श्रीराम बालाजी की बात करें तो मिगुल जो है वो उनके रेगुलर पार्टनर उनके नहीं है, और क्योंकि उनके रेगुलर पार्टनर को इंजरी हो गई थी तो एक नए पार्टनर के साथ सामंजस्य बिठाना थोड़ी सी चुनौती रहती है। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि दोनों ने पहला सेट, एक एक सेट जीता दोनों जोड़ियों ने, तो अपने आप में काबिले तारीफ है। रोहन बोपन्ना को एक एडवांटेज ये रहा कि पहला जब मुकाबला इन्होंने जीता तो दूसरे में इनको वॉकओवर मिल गया, जिसकी वजह से इनको प्रॉपर रेस्ट मिल गया, जो अमूमन बैक टू बैक जब मैचेस होते हैं तो काफी थकान का असर आपके खेल पर दिखाई देता है। तो वो मैं समझता हूं कि ये दो एडवांटेज रोहन बोपन्ना को जरूर रहे हैं।
और इसके अलावा जो बड़े सितारे हैं टेनिस के कोर्ट पर, उनके मुकाबले भी चल रहे हैं।
जी हाँ, बिल्कुल। टॉप सीड नोवाक जोकोविच पर सबकी नजरें हैं क्योंकि एक ये कैसा खिलाड़ी है जो ग्रैंड स्लैम में सबसे ज्यादा खिताब अपने नाम कर चुका है, और ये खिताब जीतने के साथ ही ये 25वां खिताब होगा उनके नाम ग्रैंड स्लैम का, और कुल मिलाकर ये जो टोटल खिताब अगर बात करें तो वो 100 के आसपास वो पहुंच जाएंगे, यानी 98 खिताब वो अपने नाम सिंगल्स के वो कर चुके हैं ओवरऑल। और यहां पर सैरुंडोलो क्या जो है पिछले साल चौथे राउंड में हारे थे, और चौथा राउंड मैं समझता हूं उनके लिए बहुत परेशानी का सबब है क्योंकि यहां भी चौथे राउंड में उनके सामने जोकोविच पड़ गए हैं, तो अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं और चौथे राउंड से आगे कभी बढ़ नहीं पाए हैं। इसके अलावा लॉरेंजो मुसेली को इन्होंने पराजित किया था पिछले मुकाबले में नोवाक जोकोविच ने, और जैविक जेनिक सिनर इटली के खिलाड़ी जो हैं इनके साथ एक प्रतिद्वंदिता दिखाई देगी नोवाक जोकोविच की नंबर वन रैंकिंग को लेकर। हालांकि लंबे समय से जोकोविच नंबर वन पर हैं और उन्होंने भी फ्रांसीसी खिलाड़ी को चार सेट के कड़े संघर्ष में हराया। जोकोविच को भी पांच सेट तक जूझना पड़ा पिछले मुकाबले में। तो अब टफ कॉम्पिटिशन मिल रहे हैं सभी खिलाड़ियों को। महिलाओं की अगर हम बात करें, अगर आपके पास समय हो तो, इगा स्वाइटेक जो पोलैंड की खिलाड़ी हैं उन्होंने अनास्तेसिया पोटापोवा जो कि रूस की हैं उनको 6-0 से बिल्कुल धो डाला और उनकी नजर जो है अब हैट्रिक पर है खिताबों की, क्योंकि दो खिताब उन्होंने लगातार बैक टू बैक जीते हैं 2022 और 2023 में। और इस तरह से यदि वो ये खिताब जीतती हैं तो मोनिका सेलेस और जस्टिन हेना के बाद वो तीसरा लगातार खिताब जीतने वाली, फ्रेंच ओपन खिताब जीतने वाली खिलाड़ी बन जाएंगी।
और अब बात कर लेते हैं बैडमिंटन की, जो कल से शुरू होगा इंडोनेशिया ओपन सुपर 1000 बैडमिंटन टूर्नामेंट। और इसमें भारतीय स्टार जोड़ी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखने की कोशिश करेंगे। वहीं अगर बात करें पुरुष सिंगल्स की तो यहां पर लक्ष्य सेन, एच एस प्रणॉय, किदांबी श्रीकांत, पी राजावत, किरण जॉर्ज भी पहले दौर में अपनी चुनौती पेश करेंगे। वहीं महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु पर भी जीत का दबाव होगा। पीवी सिंधु की जब भी बात आती है तो उनकी इंजरीज की बात आती है, उनके बैडमिंटन कोर्ट पे जिस तरीके से वो खेल रही हैं इस समय, हालांकि एक टूर्नामेंट में वो अभी उपविजेता भी रही लेकिन उसके बाद वो आगे नहीं चल पाई। अभी हालांकि ओलंपिक्स आ रहे हैं, इसको देखते हुए क्या लगता है?
देखिए, इंजरी से उबरना और कंसिस्टेंटली अच्छा प्रदर्शन करना, फाइनल में पहुंचना अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। और ओलंपिक से पहले यदि आप फाइनल तक पहुंचते हैं, उस सवर तक पहुंचते हैं, तो आपका मनोबल बढ़ता है। तो मेरी नजर तो इनसे भी सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी पर है, क्योंकि मैं तो इनको गोल्ड मेडल देखना चाहता हूं।
स्वर्ण पदक के प्रबल दावेदार हैं,
प्रबल दावेदार हैं, इस पर कोई दो राय नहीं। और कंसिस्टेंटली अच्छा प्रदर्शन किया है, और कहीं जब ये हारते हैं तो भी इनके लिए एक सबक होता है, अलार्मिंग बेल होती है और उसके बाद अगला खिताब जीतने की तरफ ये अग्रसर हो जाते हैं। तो ये जो उतार चढ़ाव है इनके खेल में, मैं तो चाहूंगा कि ओलंपिक से पहले ये हार जाएं ताकि अगली बार वो जो है गोल्ड मेडल जरूर जीतें।
मतलब आप चाहते हैं कि वो हार जाएं ताकि, जिसे कहते हैं ना कि भूखा शेर फिर स्वर्ण को सीधे जाके क्या
बिल्कुल लपक लेता है, वही इनके साथ है। क्योंकि जहां जहां ये हारे हैं उससे अगला इन्होंने खिताब जरूर जीता है। ये कुछ ऐसी विडंबना रही है पिछले हाल के कुछ दिनों में
जी। और इसके अलावा बात करेंगे इधर जो एच एस प्रणॉय और लक्ष्य सेन है, इन पर भी लोगों की निगाहें हैं। और इसके अलावा प्रणॉय जो अभी हाल ही में उन्हें हेल्थ कुछ इश्यूज रहे हैं, तो ऐसे में उन पर भी खास नजर है।
बिल्कुल, क्योंकि हेल्थ इश्यूज जो हैं ये किसी को कहीं का नहीं छोड़ते। और मैं समझता हूं कि यहां पर वो अतिरिक्त, जिसे कहते हैं एक डू और डाई वाली जो स्थिति होती है, उससे वो जरा बचने की कोशिश करें। एक्सपोजर मिल रहा है, हाथ पैर चलने चाहिए, लगातार आपको इंटरनेशनल अभ्यास मिलना चाहिए, वो ज्यादा जरूरी है इस वक्त खिताब जीतने के, क्योंकि ओलंपिक अल्टीमेट लक्ष्य है और ओलंपिक अब बस बिल्कुल सिर पर है।
अब कुछ ही टूर्नामेंट है, उसके बाद में आपके पास सब कुछ झोंक देने का जो है वो सब ओलंपिक्स के लिए ही है। और अगर महिला डबल्स की बात करें तो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर चुकी तनिषा क्रास्टो और अश्विनी पोनप्पा की जोड़ी भी इसमें अपना मुकाबला खेलेगी। त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद का सामना होगा चीनी ताइपे की चेंग यूपेई और सुन यू हिंग से। शतरंज की अगर बात करें तो आर प्रज्ञानानंदा और आर वैशाली को नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट के छठे दौर में हार का सामना करना पड़ा, जबकि मैग्नस कार्लसन ने खराब फॉर्म में चल रहे डिंग लरेन को हराकर 12 अंकों के साथ एकल बढ़त हासिल कर ली है। तो भाई बहन की जोड़ी को अभी इस दौर में हार का सामना करना पड़ा।
बहन के लिए एक राहत वैशाली के लिए यह है कि वो कोनेरो हम्पी जो है हमारी, जो एशियाई खेलों की स्वर्ण पदक विजेता भी रह चुकी हैं, उनसे वो आगे हैं, अभी 2 अंक आगे हैं। लेकिन प्रज्ञानंदा का हारना एक, मैं समझता हूं, बहुत बड़ा झटका है और यहां से अब बहुत सोच समझ के उनको आगे बढ़ना होगा।
चार दौर की बाजियां अभी हैं, बाकी हैं
कवर करने के लिए अभी मौका है
जी। बिल्कुल, और अभी जैसा आपने बताया, हालांकि इसमें कोनेरू हम्पी जो है बहुत, जिसे कहते हैं कि एक वरिष्ठ खिलाड़ी के तौर पर जिनसे उम्मीद की जा रही थी, उस तरह का प्रदर्शन नहीं कर पा रही हैं। और श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का, और खेल खबरों पर जरूर बात करते हैं लेकिन फिर कल मिलेंगे कुछ और ताजा खेल खबरों के साथ। मनोज, आप हमारे स्टूडियो में आए, तमाम खेल खबरों पर हमसे चर्चा की, इसके लिए धन्यवाद। सभी को नमस्कार।